संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 8 मई 2020 के इस बुलेटिन में शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के साथ ही बढ़ रही है नफरत नामक महामारी भी। नफरत पर एकजुटता से लगाम लगाने की पुकार। निर्बलतम देशों में लोगों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र की लगभग 7 अरब डॉलर की रकम जुटाने की अपील। कोविड-19 के हालात में जच्चा बच्चा के लिए नए खतरे। स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की पुकार। विकलांग व्यक्तियों पर भी महामारी का भीषण असर, उनके अधिकारों की गारंटी की मांग। कोविड-19 से प्रभावित बहुत से लोग हो सकते हैं मानव तस्करों के और ज्यादा शिकार। और महामारी से उत्पन्न आर्थिक मंदी में सभी लोगों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने का सुझाव। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। साथ ही आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। इस ऐप में बाईं ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके जरिए ताजा समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के साथ नफरत भरे संदेशों की सुनामी भी तेजी से उभरी है, जिसे रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट कार्रवाई की दरकार है। उन्होंने चिंता जताई कि विदेशियों के प्रति डर व नापसंदगी और नस्लवाद बढ़ रहा है, साथ ही लोगों व समुदायों को बलि का बकरा बनाकर डर फैलाया जा रहा है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने एक वीडियो संदेश में कहा,
COVID-19 does not care who we are, where we live, what we believe, or about any other distinction. We need every ounce of solidarity to tackle it together. Yet, the pandemic continues to unleash a tsunami of hate and xenophobia, scapegoating and scaremongering.
UN महासचिव कह रहे थे कि कोविड-19 वायरस ये परवाह नहीं करता कि हम कौन हैं, हम कहां बसते हैं, हमारी आस्थाएं क्या हैं या किसी अन्य प्रकार की भिन्नताएं। इस सुनामी से एक साथ मिलकर निपटने के लिए हर संभव एकजुटता की जरूरत है। फिर भी विदेशियों के खिलाफ भावनाएं, यहूदीवाद विरोधी साजिशों की धारणाएं देखी गई हैं और मुसलमानों पर हमले हुए हैं। प्रवासियों और शरणार्थियों को वायरस का स्रोत बताकर तिरस्कृत किया गया है और उन्हें उपचार से वंचित रखा गया है। पत्रकारों, स्वास्थ्य कर्मियों, राहत कर्मियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को महज अपने काम की जिम्मेदारी निभाने के लिए ही निशाना बनाया गया है। UN प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल अभी कार्रवाई करनी होगी ताकि समाजों की प्रतिरोधी क्षमता को नफरत के वायरस के विरुद्ध मजबूत बनाया जा सके। महासचिव गुटेरेश ने राजनीतिक नेताओं से सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देकर उसे और ज्यादा मजबूती प्रदान करने का आग्रह किया है। साथ ही शैक्षिक संस्थानों को डिजिटल साक्षरता पर प्रयास केंद्रित करने होंगे, क्योंकि अरबों युवा ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां वे अतिवादियों या चरमपंथियों का शिकार बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया, विशेषकर सोशल मीडिया कंपनियों को नस्लवादी, महिला विरोधी और अन्य हानिकारक वेब सामग्री के बारे में चेतावनी देने के लिए और ज्यादा प्रयास करने होंगे। महासचिव ने हर किसी से हर जगह नफरत के खिलाफ खड़ा होने, एक दूसरे के साथ गरिमामय बर्ताव करने और दयालुता फैलाने के हर अवसर का लाभ उठाने का भी आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसियों ने विश्व भर में 60 से ज्यादा बेहद नाजुक हालात वाले देशों में कोविड-19 महामारी का फैलाव रोकने और लाखों लोगों की जिंदगियां बचाने की मुहिम में लगभग 7 अरब डॉलर की रकम जुटाने की अपील की है। वैश्विक मानवीय सहायता प्रतिक्रिया योजना गुरुवार को जारी की गई, जिसमें समाजों के बेहद निर्बल और वंचित लोगों को सहायता व सुरक्षा मुहैया कराने को प्राथमिकता पर रखा गया है। इनमें वृद्ध लोग, विकलांग व्यक्ति, महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी कुछ खबरों का सार सुनिए सचिन गौड़ से।
संशोधित योजना की ये पुकार महासचिव एंटोनियो गुटेरेश द्वारा मार्च के अंत में जारी की गई 2 अरब डॉलर की अपील पर ही आधारित है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यों के संयोजक मार्क लोकॉक ने अपील जारी करते हुए आगाह किया कि अगर अभी ठोस एहतियाती उपाय नहीं किए गए तो लड़ाई झगड़े, भुखमरी, गरीबी के हालात पैदा होने के साथ साथ अकाल की स्थिति भी पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा,
We must fight the disease, but in the poorest countries, it won't be the only battle we face. A coronavirus vaccine is essential.
हमें इस वायरस से लड़ना होगा, लेकिन निर्धनतम देशों में सिर्फ यही एक लड़ाई नहीं होगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन जरूरी है, लेकिन ये एक बच्चे को भुखमरी का शिकार होने से नहीं बचाएगी। अगर हमने तेजी से कदम नहीं उठाए तो विकास पथ पर कई दशकों की प्रगति को बड़ा धक्का पहुंचेगा। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यों के संयोजक मार्क लोकॉक। कोविड 19 महामारी अब विश्व के हर देश में लगभग हर कोने तक पहुंच गई है। दुनिया भर में इस महामारी से अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मानवीय सहायता एजेंसियों का मानना है कि निर्धन देशों में इस महामारी का उच्चतम दौर अगले 3 से 6 महीनों के भीतर आने की संभावना है। महामारी का प्रभाव पहले इस रूप में नजर आने लगा है कि लोगों की आमदनी कम हो गई है और बहुत से लोगों के रोजगार छिन गए हैं। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बाधित हो रही है। करोड़ों बच्चों को नियमित टीके नहीं लगे हैं और उनके स्कूलों से बाहर रहने के कारण उन्हें स्कूली भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम व अन्य यूएन एजेंसियां और उनके साझेदार संगठन भोजन संबंधी तत्काल जरूरतों के लिए हर दिन लगभग 10 करोड़ लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वैसे तो इन देशों में कोविड 19 संक्रमण के अभी कम ही मामले हैं, लेकिन निगरानी, लैब टेस्ट और स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा बहुत कमजोर है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने शुक्रवार को ध्यान दिलाया कि चेचक पर मानवता की विजय दर्शाती है कि साझा स्वास्थ्य खतरों से देश एक साथ मिलकर सफलतापूर्वक निपट सकते हैं।
Exactly 40 years ago today, on the 8th of May 1980, the World Health Assembly officially declared that the world and all its peoples
आज से ठीक 40 साल पहले 8 मई 1980 को विश्व स्वास्थ्य असेंबली ने आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि दुनिया और उसके सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति हासिल कर ली है। उन्मूलन से पहले चेचक ने मानवता को 3000 सालों तक जकड़े रखा और 20वीं शताब्दी में ही 30 करोड़ लोग उसका निवाला बने। यूएन एजेंसी प्रमुख ने कहा कि चेचक पर जीत में वैश्विक एकजुटता ने अहम भूमिका निभाई थी और साझा दुश्मन को हराने के लिए अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ तब साथ आए जब शीत युद्ध चरम पर था। कोविड 19 को हराने के लिए भी राष्ट्रीय एकता पर आधारित उसी एकजुटता को अपनाने की जरूरत बताई गई है।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने अनुमान जाहिर किया है कि कोविड 19 महामारी शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 11.60 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ है। संगठन ने इस संदर्भ में तमाम देशों की सरकारों से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए जीवनदायी सेवाओं का संचालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया है, क्योंकि उनके लिए पहले से ही दबाव में काम कर रही स्वास्थ्य सेवाओं और बाधित आपूर्ति श्रृंखला के माहौल में ज्यादा खतरा दरपेश है। एक डिस्पैच के साथ अंशु शर्मा।
जच्चा बच्चा संकट के इस दौर में अनेक तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें भीड़ भरे स्वास्थ्य केंद्र, उपकरण और जरूरी चीजों की आपूर्ति में बाधा और दक्ष व प्रशिक्षित दाइयों की कमी शामिल है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिटा फोर ने कहा, विश्व भर में करोड़ों महिलाएं एक ऐसी दुनिया में मातृत्व के रास्ते पर निकली हैं जिन्हें इस तरह का संकट देखने को मिला है। उन्हें अब अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया में लाने के लिए तैयार रहना होगा जहां होने वाली माताएं स्वास्थ्य केंद्रों पर जाने में घबरा रही हैं कि कहीं उन्हें महामारी का संक्रमण ना लग जाए। कोविड 19 को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के 9 महीनों के भीतर जिन देशों में सबसे ज्यादा बच्चों का जन्म होगा उनमें भारत का स्थान सबसे ऊपर है, जहां लगभग 2.10 करोड़ बच्चों का जन्म अपेक्षित है। भारत के बाद चीन में लगभग 1.35 करोड़, नाइजीरिया में 64 लाख, पाकिस्तान में 50 लाख और इंडोनेशिया में 40 लाख बच्चों का जन्म अपेक्षित है। इनमें से अधिकतर देशों में वैश्विक महामारी के संकट से पहले भी नवजात शिशुओं की मौत होने की उच्च दर देखी गई है। इनके अलावा धनी देश भी वैश्विक महामारी के संकट से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि विश्वास और आपूर्ति का अभाव है। वैसे तो इस बारे में अभी ठोस जानकारी मौजूद नहीं है कि क्या कोरोना वायरस का संक्रमण किसी महिला से उसके नवजात शिशु में भी स्थानांतरित हो सकता है। फिर भी यूनिसेफ की सलाह है कि सभी गर्भवती महिलाओं को खुद को वायरस से सुरक्षित रखने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। कोविड 19 के संक्रमण के लक्षणों के बारे में खुद की सघन निगरानी करें और किसी भी तरह की आशंका होने या लक्षण प्रतीत होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता हासिल करें। गर्भवती महिलाओं को ये भी सलाह दी जाती है कि शारीरिक दूरियों के नियमों का पालन करें, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं और अगर वो जोखिम वाले क्षेत्रों में रहती हैं या उन्हें बुखार, खांसी या फिर सांस लेने में कठिनाई हो तो बिल्कुल आरंभिक स्तर पर ही चिकित्सा परामर्श लें। साथ ही गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर जन्म देने के बारे में अपनी दाई या डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और जन्म के समय घबराहट और चिंता कम करने के तरीकों पर पहले से गौर करना चाहिए।
दुनिया की कुल आबादी का लगभग 15% हिस्सा यानी करीब 1 अरब लोग विकलांगता के साथ जीवन गुजारते हैं। कोविड-19 संकट से उपजे हालात में विश्व आबादी के इस बड़े हिस्से को जरूरी मदद और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में मुश्किलें पेश आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने बुधवार को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें महामारी से निपटने की कार्रवाई में विकलांगों का समावेश सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। यूएन प्रमुख के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में भी विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के अवसरों की उपलब्धता मुश्किल होती है और अपने समुदायों में भागीदारी के अवसर कम मिलते हैं। उनके निर्धनता में रहने और हिंसा, उपेक्षा व दुर्व्यवहार का शिकार होने की आशंका ज्यादा होती है। बुधवार को जारी रिपोर्ट में कोविड-19 पर कार्रवाई में विकलांगता समावेश सुनिश्चित करने के लिए ऐसी सिफारिशों का उल्लेख किया गया है जिनके जरिए समावेशी व सुलभ समाजों का निर्माण संभव है। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए तालाबंदी, यात्राओं पर पाबंदियां, संसाधनों में कटौती और अन्य तरह के उपायों के कारण मानव तस्करी के शिकार लोग और ज्यादा शोषण के जोखिम में घिर रहे हैं। मादक पदार्थों व अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय UNODC का कहना है कि संगठित आपराधिक गुट महामारी से उपजे हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन एजेंसी द्वारा किए गए नए विश्लेषण में नजर आता है कि महामारी का संकट मानव तस्करी के शिकार लोगों को चौतरफा तौर पर प्रभावित कर रहा है। बहुत से देशों ने महामारी के कारण अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं और इस वजह से मानव तस्करी के शिकार कुछ लोग अपने घरों को वापस नहीं लौट सकते। हर साल हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मानव तस्करों के जाल में फंस जाते हैं जो कि मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होने के साथ साथ एक गंभीर अपराध भी है। मादक पदार्थों में अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय UNODC को ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि महामारी के कारण अब ज्यादा बच्चों को खाने पीने की चीजों और धन की खातिर सड़कों पर धकेला जा रहा है। इससे उनके शोषण का खतरा बढ़ रहा है। कुछ अन्य लोग कानूनी प्रक्रिया में देरी का सामना कर रहे हैं, साथ ही उन्हें मिलने वाली सहायता और संरक्षण में भी कटौती हो रही है जिसके सहारे उन्हें बेहतरी की उम्मीद रहती है। यूएन एजेंसी ने आगाह करते हुए कहा है कि महामारी से उपजे हालात ने संगठित अपराध के लिए कुछ नए अवसर पैदा कर दिए हैं। तस्करों के अब और भी ज्यादा सक्रिय होने की आशंका है और वे ऐसे लोगों की तलाश बढ़ा सकते हैं जो पहले की तुलना में कमजोर परिस्थितियों में हैं, क्योंकि सख्त पाबंदियों में लोगों की आमदनी का जरिया बंद हो गया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और मादक पदार्थों एवं अपराध पर यूएन कार्यालय ने एक साझा वक्तव्य जारी किया है। इस बयान में बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भरी हुई नावों में महिलाएं, पुरुषों और बच्चों के फंसे होने पर चिंता जताई गई है। इनमें रोहिंग्या समुदाय के सैकड़ों लोग भी हैं जो मूलतः म्यांमार के पश्चिमी क्षेत्र से हैं। भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता के बगैर फंसे हुए लोग किनारे तक नहीं आ पा रहे हैं। समुद्री मार्ग में फंसे हजारों लोगों को अगर नहीं बचाया गया तो उनके लिए जान का जोखिम पैदा होने का संकट है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने आपात हालात में क्षेत्रीय स्तर पर समाधान निकालने के लिए देशों को समर्थन देने की पेशकश की है ताकि शरण तलाश रहे लोगों, शरणार्थियों व नाजुक हालात में फंसे प्रवासियों के लिए मदद मुहैया कराई जा सके। साझा बयान के मुताबिक कुछ देशों ने पहले ही दिखाया है कि समुद्र में फंसे लोगों को सुरक्षित, नियमित व गरिमामय ढंग से उतारा जा सकता है और उनकी स्वास्थ्य जांच और अलग रखे जाने का इंतजाम किया जा सकता है। यूएन ने अपनी अपील में जोर देकर कहा है कि लोगों की आवाजाही की मनाही न सिर्फ जीवन के लिए खतरा है बल्कि बुनियादी मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री क्षेत्र कानून का भी उल्लंघन है।
विश्वव्यापी महामारी कोविड 19 महज एक स्वास्थ्य संकट भर नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों के लिए एक आर्थिक संकट भी साबित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की एक वरिष्ठ अधिकारी ने देशों से अपने नागरिकों को सार्वभौमिक बुनियादी आय तय करने का आग्रह किया है, ताकि उन लाखों करोड़ों लोगों की मदद हो सके जिनके रोजगार और आमदनी महामारी पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों की भेंट चढ़ गए हैं। यूएन विकास कार्यक्रम यूएनडीपी एशिया प्रशांत ब्यूरो की प्रमुख करणी विग्नराजा ने यूएन न्यूज के साथ बातचीत में बताया कि सार्वभौमिक बुनियादी आय यानी सरकारों द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली एक न्यूनतम रकम के सुझाव को समर्थन क्यों मिल रहा है। कोविड 19 के फैलाव ने अर्थव्यवस्थाओं को बुनियादी रूप से हिला दिया है और लोग मौजूदा आर्थिक मॉडलों पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीमारी ने अन्याय और विषमता के मौजूदा स्तर को दुनिया भर में उजागर कर दिया है, इसलिए निडर विचारों की जरूरत है, उनकी भी, जिन्हें पहले खारिज कर दिया गया था। उन्होंने कहा है कि यूएन का कहना है कि अगर ऐसे संकट के माहौल में किसी निश्चित आय का स्तर नहीं है तो लोगों के पास फिर कोई अन्य विकल्प नहीं है। अपनी गुजर बसर करने के लिए कुछ साधन ना होने पर उनके भुखमरी या बीमारी का शिकार होने की आशंका ज्यादा है कोविड 19 का निवाला बनने से पहले ही। ये विस्तृत इंटरव्यू हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें अनेक पहलुओं पर बातचीत की गई है। हमारी वेबसाइट का पता हम एक बार फिर बता देते हैं, news.un.org/hi। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।